आपकी अभी की स्थिति से आपको जब तक उबान नहीं आती है तब तक मेरी जो मेहनत है वो पूरी सफल नहीं हो पाती, इसलिए आप कम से कम अपने ऊपर कृपा न करें तो कोई हरकत नहीं, साधु बाबा के ऊपर तो कृपा करें, मुझे थोड़ा सहयोग दें, जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं वहां चलने को राजी हो जाएं। ओम ओम बीजू मारी पास शू छे, कितलू कहूं, क्यांथी शब्दों लाऊं, मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है और तुम्हें जगाना मेरा उद्देश्य है। इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम अन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ओम ओम ओम। जब जब इंद्रियों के अर्थ में आकर्षण हो तो इस श्लोक के अर्थ को ही याद कर लेना, श्लोक याद रहे तो ठीक है, नहीं तो के इंद्रियों के अर्थ दिखते मीठे हैं, जैसे सांप लगता कोमल है लेकिन काटता है, अंगारे लगते हीरे जैसे हैं लेकिन अंग छुओ तो तपा देते हैं, विषयों में और विष में इतना ही अंतर है कि विष जब आदमी पीता है तब खाना खराब होता है लेकिन विषयों का चिंतन करने से स्वयं खराब होने लगता है, विषयों का चिंतन होने मात्र से हृदय में धबकारे हल्के होने लगते हैं, प्राण की गति हल्की होने लगती है, इसलिए जब जब विषय हमें खींचे तब तक उस जगह को छोड़कर कुछ पानी पी लें, जगत के मिथ्यात्व को याद करेंगे, जगत की नश्वरता को याद करेंगे तो विषयों से बचने का मौका मिलेगा, शमशान में जाकर शरीर की स्थिति देखेंगे तो विषयों से बचने का मौका मिलेगा, मुर्दे को या बीमार व्यक्ति के गंदे जो शरीर में से जो माल मलिदा निकल रहा है उसको देखेंगे कि आज बदू भरू तो आए हाय राम, जय पत्नी देव जय पति देव, पैणिया था त्यारे शू चोटी जता था ना, आऊ जतु मैं हाय राम बापा बापा रे ओरे, आपनो पति के आपनी पत्नी युवती हो तो वांधो नहीं, पण कोई दोषी कोई दोषानु शरीर जो इने समझवो के आए दोषी ने आ दोषा थशन छेवटे आऊ ना आऊ छे हाय राम हाय नारायण नारायण। इस प्रकार आप विषयों से, पांच प्रकार के विषय उसमें सबसे ज्यादा आकर्षक काम विषय है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अली अली माना भंवरा, भंवरा में इतनी ताकत है कि वो बांस को चीर कर घर बना देता है, लकड़ों को चीर देता है, लेकिन कमल में जाता है और जरा सा सुगंध का गुलाम हो जाता है कि चलो बैठे हैं अभी तो देर नहीं हुई देर नहीं हुई, ऐसे करते सांझ हो जाती है कमल बंद हो जाते हैं। अब वो चाहे तो जो बांस को चीर सकता है तो चमल कमल से बाहर होना उसके लिए आसान है, लेकिन कहीं वांधो नहीं चलो बह जाए थोड़ा थोड़ा, ऐसे करते करते सुबह आती है और जानवर आते हैं उसे कमलों को खा जाते तोड़ देते कुचल देते हैं और वो अली जो है मर जाता है। भमरा भमरा अली पतंग मृग मीन गज, पतंगिया दिए पर जरा सा सुख लेने को जाता है फिर जलता है, कई जल के मरे वो देखता है फिर भी जरा मजा लेने जाता है जरा मजा लेने जाता है, देखने का सुख देखने का सुख देखने का सुख में अरे क्या सुख। मैंने सुनाई थी कहानी कि वो रणजीत सिंह राजकुमार ने शादी की थी, शादी के थे और जब महाराज पहली बार ससुराल जा रहा था तो दासियां दास वजीर के पुत्र कुछ सचिव साथ में जाता था, पूरे कोच के कोच बुक थे, फर्स्ट क्लास में तो स्वयं थे, सेकंड क्लास में वजीर के बेटे और ये थे, तो एक लड़का वजीर का जो था वो बार बार हर स्टेशन पर उतर के लेफ्ट राइट करता और जब उसके डिब्बे से रणजीत सिंह के डिब्बे से गुजरता तो जाता तो सीधा था लेकिन आंख टेढ़ी थी कैसे भी करके ओ दुल्हन का मुंह देखने की उसकी आकांक्षा थी। रणजीत सिंह उसे बाप गया हर स्टेशन पर, वो बच्चा जवान कोई था राजकुमार तो नहीं तो वजीर का कोई लड़का था लेकिन राजकुमार से वो कम नहीं था, ड्रेस व्रेस जरा पैरी थी और वो बार बार निगाह टेढ़ी करके उस बोगी से गुजरता था, दो चार स्टेशनों पर उन्होंने रंग देख लिया, फिर किसी पांचवी स्टेशन पर ट्रेन जब खड़ी हुई तो रणजीत सिंह उतरा, राजा रणजीत सिंह जो राजकुमार थे पहले उतरा और उसके कांडा पकड़ा बांह पकड़ी और अंदर ले गया कोच में फर्स्ट क्लास में और अपनी दुल्हन को कहा कि घूंघट खोल, उसको कहा देख ले गधे देख ले मुंह खोल तू देख ले पेट भर के देख ले, इधर से उधर उधर से उधर लेफ्ट राइट करता तू किस लिए करता है, इसका मुखड़ा देखने के लिए कमबख्त महीनों तक मेरे साथ है, मेरे को सुख नहीं मिला तृप्ति नहीं मिली तो टेढ़ी आंख से दिख जाएगी तो क्या मिलेगा देख ले पेट भर के देख ले शू छे। विषय तो विषय है लेकिन विषय को देखने की वृत्ति भी आदमी के चित्त को मलिन कर देती है। जय जय अली पतंग। ये तो खैर वो राजकुमार, वो राजा वजीर का लड़का ऐसा था, आप लोगों के वहां तो ऐसा कोई होगा नहीं, लेकिन आज पड़ोस की बहन को बहन कहने की योग्यता नहीं है बच्चों में, और पड़ोस के भाई को भाई कहने की भी ईमानदारी से योग्यता नहीं है। ऐसा फिल्म का प्रभाव हम लोगों के खोपड़ों में पड़ गया, चलचित्रों का प्रभाव ऐसा पड़ गया है। खैर तो पतंगिया आता है दिए पे, जरा मजा लेते, जरा जरा करते जल मरता है। मछली को वैसे कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन वो मछली खाने के स्वभाव से थोड़े स्वाद की लालच से आ जाती है। जाले में कुछ मांस लगाया हुआ होता है, बड़े बड़े समुद्र में जो जाले होते ना, वे लोग भी कुछ न कुछ मांस लगा देते, कोई न कोई मछली लगा देते, फिर पकड़ाती, तो कुछ न कुछ स्वार्थ में आकर, कुछ स्वाद में आकर वो मछलियां मांस का पीस गलने जाती है और कांटा फंस जाता है, तड़प तड़प के प्राण देती है। गजराज को कौन पकड़े, लेकिन वो गजनी रख देते हैं, हाथी नहीं खड़ी कर देते घास फूस की बनाकर, नीचे खड्डा होता है, वो हाथी देखता है कि महबूबा है, वो दौड़ता है, दौड़ता है महबूबा में तो काम आ जाता है, अंधापन हो जाता है, महबूबा को टच करने जाए तो खुद महबूबा हो जाता है, खड्डे में पड़ जाता है। दो पांच दिन भूखे रहते हैं और बाद में जंजीरों बंजीरें डाल के पकड़ के उसको एक छोटा सा महावत दर दर की भीख मंगवाता है। हाथी में कितना बल है, लेकिन एक छोटा सा महावत उसकी कमजोरी को जानकर उसको उसके ऊपर राज्य कर लेता है। ऐसे ही तुम तो हाथी से भी तुम्हारे में ज्यादा बल है, लेकिन ये तुम्हारा मन रूपी महावत तुम्हारी कमजोरी जानकर तुमको दर दर के माताओं के गर्भों की ठोकरें खिलाता है। वो महावत तो एक जन्म तक हाथी को दर दर की ठोकर खिलाएगा, लेकिन ये मन रूपी महावत तो 84-84 लाख माताओं के गर्भों की हमें ठोकर खिलाता है। ये श्लोक बड़ा कीमती है। तो अली पतंग मृग मीन गज। मृग आवाज सुनने में तल्लीन हो जाता है और फिर शिकारी उसे निशान बना देता है। एक एक रस आंच, वो एक एक रस में पड़ते हैं और जीवन खो देते हैं, लेकिन जो पांचों रस में लगा है और जिसको सत्संग नहीं है, बंदगी नहीं है, जागृति नहीं, तो उसकी क्या गति। क्या अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आंच, त्रिसी तिनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच। महाराज हवाई जहाज की मुसाफरी में सुविधा भी ज्यादा है और खतरा भी ज्यादा है। पैदल के एक्सीडेंट, पैदल चलते चलते गिरेगा छोटी ठोकर खाएगा, लेकिन साइकिल पे गिरेगा तो ज्यादा ठोकर, और स्कूटर का एक्सीडेंट फ्रैक्चर किए बिना नहीं रहेगा, और कार का एक्सीडेंट न जाने क्या कर दे, और हवाई जहाज का एक्सीडेंट हड्डियां खोजने में मेहनत कर देगा। ऐसे ही मानव जन्म है, हवाई जहाज की यात्रा है, इसमें संभालते रहें कहीं जिंदगी एक्सीडेंट रूप ना हो जाए। और मुसाफरी इसी जन्म में करोड़ों, ये तो 10,000 माइल की मुसाफरी एक दिन में करेगा तुम्हारा जहाज, लेकिन ये तुम्हारा मानव देह करोड़ों जन्म के कर्मों को काटने की मुसाफरी इसी जन्म में कर सकता है। कब करता है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। ये श्लोक है, आप लोग वहां पढ़िए। अन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। पंडित लोग पढ़ते भी हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम सवार उपयो राखो। जो ब्राह्मण तनधारी होकर यजमान वृत्ति से याचक वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और भोग भोगते हैं, वो दूसरे जन्म में कौवा होते हैं। जन्म से आदमी शूद्र होता है, दीक्षा से द्विजात्य होता है, वेदाध्ययन से पुरोहित होता है, और ब्रह्म ज्ञान पाने से वो ब्राह्मण होता है। ब्रह्म ज्ञान के रास्ते चलने से ब्राह्मण होता है। आप अगर चलते तो आप सब ब्राह्मण हैं। ओम 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 ओम। तो जब जब किसी वस्तु का हमें अभाव सताए या दुख सताए या अपमान का भय सताए, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मैं गलत जगह पे आ गया है। जहां हम हैं वहां हमारा मैं नहीं है, लेकिन जहां हम नहीं रह सकते सदा वहां हमारा मैं टिका है। इसलिए हमको भय है, इसलिए हमको तपन है, इसलिए हमको चिंता है। इस प्रकार का विवेक का अगर अवलंबन लेंगे ना तो बहुत लाभ होता है। योग वासिष्ठ में एक कथा है मंकी ऋषि की। मंकी ऋषि जब घर में ही थे, उन्होंने व्यापार धंधा जो किया उसमें फावट नहीं आई, सारी संपत्ति पूरी हो गई, सफलता नहीं मिली। आखिर थोड़े से पैसे बचे थे, दो बैल खरीदे। बैलों को हल खींचने के लिए वो लकड़ा होता है ना आड़ा, उसको क्या बोलते हैं, दूसरी गुजराती शब्द है, हिंदी पूछता हूं, जुआ 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 गुजराती में दूसरी। ए बड़दिया ने दूसरी पैरा आवी ने लाई रहा था पोताना घर बाजू। अबे दूसरी में तो छेटा छेटा बड़दिया होए, ऊंट ऊपर थी जा रहे आ भाई हेड्या बाजू में थे ने ले ऊंट भड़क्यू तो दूसरी फसाई ऊंट ना पांखड़ा में, એટલે ઊંટ ભડક્યો અને આ બળદિયાને બે ફાંસો બિચારાને આવ્યો। એ દૂસરીમાં ફાંસો ખાઈ રીબાઈને ત્યાં મરી પડ્યા। મંકીને વૈરાગ્ય આવ્યું કે અરે નશ્વર જગત, નશ્વર પ્રાણ, નશ્વર દેહ, બળદિયા દૂસરીમાં ફાંસો ખાઈને મરી ગયા એ જોઈને મંકીને વૈરાગ્ય થયો અને તીર્થયાત્રા કરી, દેવ દર્શન કર્યા, વ્રત કર્યા, તપ કર્યું, પણ હૃદયમાં હજી પરમ શાંતિ કેમ મળતી નથી? સંસારના ભોગની ઈચ્છા નથી તો આત્માનો આનંદ, સમાધિનો સુખ હજી કેમ આવતો નથી? એમ કરીને એ પાછા ઘર તરફ વળી રહ્યા હતા તો રસ્તામાં જતા જતા વશિષ્ઠ મહારાજ આકાશ માર્ગે અજ રાજા એમને યાદ કર્યા હતા, ત્યાં જવાના હતા। એને જોઈને નીચે ઉતર્યા ને પાછળ પાછળ જવા લાગ્યા ત્યારે મંકી ઋષિ કહે છે કે ત્રાહિમામ ત્રાહિમામ, હાય દુઃખ હાય દુઃખ, જ્યાં જાઓ ત્યાં દુઃખ જ દુઃખ છે, આ નશ્વર સંસારમાં તપન તપન છે, અહીંયા મરુભૂમિની તપન છે, આ સામે હવે ગીવરોના શિકારીઓના ઘર દેખાય છે, માછીઓના ઘર દેખાય છે, ત્યાં જઈશ, જરા પાણી પીશ, કાંઈ ખાઈશ, થોડુંક છાયામાં બેસીશ, મારી તપન ક્યારે મટે? એ વાત વશિષ્ઠજી મહારાજે સાંભળી। વશિષ્ઠ મુનિ સુન રહે હૈ મંકી ઋષિ કા વિલાપ કે હાય હાય, સંસાર મેં તપન હી તપન હૈ, ઇન્દ્રિયો કે અર્થ મેં ભી તપન હૈ, નહીં મિલતે તો ભી તપન હૈ, ધન નહીં મિલતા હૈ તો ભી તપતા હૈ હૃદય, ઓર ધન મિલ ગયા તો સેટ કરને મેં તપતા હૈ, ઓર ધન છોડ કે મરા તભી ભી તપતા હૈ, પત્ની નહીં આઈ તો ભી તપતા હૈ, ઓર આ ગઈ તો ભી તપતા હૈ, ક્યુંકિ એસા ચલતા હૈ, અચ્છા ચલતા હૈ તો ભી શક્તિ નાશ કરકે ભી પશ્ચાતાપ કરતા હૈ, બેટા નહીં હોતા હૈ તો ભી તપતા, ઓર બેટા હો ગયા પડતા નહીં તો ભી તપતા હૈ, પડ ગયા ઓર પાસ નહીં હુઆ તો ભી તપતા, ઓર પાસ હો ગયા નોકરી નહીં મિલતી તો ભી તપતા હૈ, નોકરી મિલ ગઈ લેકિન લડકે કો ઠીક સે છોકરી નહીં મિલતી તો ભી તપતા હૈ, ઓર છોકરી મિલ ગઈ ઓર ફિલ્મ મેં જાતે તો ભી તપતા હૈ, ફિલ્મ મેં નહીં જાતે તો કે બુદ્ધું હૈ એસા સોચ કે ભી તપતા હૈ, ઓર ઉસ છોકરે કે ભાઈ બંધ આતે હૈ ઓર ખા પી કે જાતે તો ભી તપતા હૈ, ઓર કોઈ ભાઈ બંધ નહીં મિલતા હૈ તો ભી તપતા હૈ, ઇસ જગત મેં તપન કે સિવાય ઓર બચા હી ક્યા હૈ, તંદુરસ્ત રહેતા હૈ તો કામ ક્રોધ સે તપતા હૈ, ઓર બીમારી હોતા હૈ તો બીમારી મેં તપતા હૈ, તીર્થ યાત્રા કરને જાતા હૈ તો ભી કષ્ટ સહ કે તપતા હૈ, ઓર ઘર મેં બેઠા રહેતા હૈ તો ભોગો મેં તપતા હૈ, હાય રામ અબ કહાં જાયે ઇસ જીવ કા ક્યા દશા હૈ, સંસાર મેં સિવાય તપન કે ક્યા હૈ, શાયદ ઇસ ગીવરો કે ગાંવ મેં જાઉં, જરા પાણી બાની પીઉં, જરા વૃક્ષ કે નીચે બેઠું, મેં અપની તપત મિટાઉં। તબ વશિષ્ઠજી બોલતે કે હે માર્ગ કે મિત્ર, જો ખુદ સ્વયં અશાંતિ કે આગ મેં અવિદ્યા કી તપન મેં તપ રહે હૈ, ઉનકે પાસ જાકર તું તપન કૈસે મિટાયેગા? જૈસે કિસી કો આગ લગી ઓર આગ બુજાને કે લિયે તિનખે ડાલ દે, કિસી કો આગ લગી ઓર પેટ્રોલ પંપ કા ફુવારા કરને જાય, એ તો આગ બઢાને કી બાત હૈ, મરુભૂમિ કા મૃગ હોના અચ્છા હૈ, પથ્થર કા કીડા હોના અચ્છા હૈ, લેકિન અજ્ઞાની મૂર્ખો કી દોસ્તી કરના બુરા હૈ, પથ્થર કા કીડા તો ભૂખ સે તપતા હૈ, લેકિન અજ્ઞાની તો વિકારો સે તપતે, પથ્થર કા કીડા તો તપ કે એક જન્મ મેં મર જાયેગા, લેકિન ભોગો મેં જો તપ રહે ઉસકો તો 84 લાખ જન્મ લેને પડેંગે। હે માર્ગ કે મિત્ર, હમારે શરીકોં કા તુ સાનિધ્ય લે, તેરી તપન મિટા દેગે, હમારા એક ભી એસા શિષ્ય નહીં હુઆ જિસકી મેને વચન કે અમૃત સે તપન ન મિટાઈ હો, આપ હમારા સંગ કીજે, મેં તુમ્હારી તપન મિટા દુંગા। મંકી ઋષિ जैसे आखिरी श्वास लेते हुए व्यक्ति को साक्षात शिवजी आकर वरदान दे और आलिंगन करे, निर्धन को कुबेर भंडारी आकर अभिषेक कर दे, ऐसे ही मंकी ऋषि की हजारों निराशा में वशिष्ठ मुनि के शब्द महा आशा का सूर्य उदय कर दिए। मुनि तुम कोई आदि पुरुष मालूम होते हो, तुम कोई विराट पुरुष मालूम होते हो, मनुष्य देह में तुम साक्षात कोई पर ब्रह्म परमात्मा के आनंद से पूर्ण पुरुषोत्तम मालूम होते हो। ऐसा करके मंकी ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा है कि नाथ में अब तुम्हारे शरण, क्योंकि इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य था इसलिए वशिष्ठ के दो वचन सुनकर उसे तसल्ली हो गई। वशिष्ठ मुनि ने फिर मंकी ऋषि को आत्मविद्या का उपदेश दिया है और मंकी ऋषि वहां पहुंचा है जहां कृष्ण पहुंचकर प्रेम बरसाते हैं। मंकी ऋषि वहां पहुंचा है जहां कबीर और नानक पहुंचे हैं, जहां राम जी का अपना आपा है वही वशिष्ठ का अपना आपा है, जहां वशिष्ठ का अपना आपा है वही मंकी का अपना आपा पहुंचा है। और वशिष्ठ जीवन मुक्त होकर सब तपनों से पार हो गए। थे तो पहले भी वही मंकी और बाद में भी वही, लेकिन अंदर की समझ बदल गई और आत्मपद को पाकर मंकी ऋषि ज्ञात ज्ञेय हो गए। मंकी ऋषि का आख्यान योग वशिष्ठ में भी आता है और मंकी गीता में भी आता है। केवल बैलों को मरते देखकर, हम तो मनुष्यों को मरते देखकर भी वैराग्य को उपलब्ध नहीं होते। तुलसीदास जी घर गए पत्नी के पास और महाराज वो सांप था अजगर के सहारे, लटके हुए अजगर के सहारे खिड़की कूद के चले गए और पत्नी ने कहा कैसे आए नाथ, ऐसे बादलों घनघोर आंधी तूफानों में कैसे पहुंचे, द्वार तो बंद था घर में कैसे आ गए। बोले प्रिय तूने जो रस्सा टिंगाया था। मैंने तो रस्सा नहीं टिंगाया, अभी टिंगाया है। फानस लेके देखा तो अजगर या सांप लटका था। बोले हो मेरी इच्छा में मेरी आकांक्षा में सांप को रस्सा समझ के आप आ गए, मुर्दे को ठूंठ समझ के नदी तैर के आ गए। मेरे देह में इतनी प्रीति से आधी अगर भगवान में होती तो आपका तो बेड़ा पार होता, आपकी मीठी निगाहों से दूसरों का बेड़ा पार हो जाता। आड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति याते आधी आधी, जितनी हमारी पत्नी की पति के शरीर में, पति की पत्नी के शरीर में प्रीति है, लोभी की रुपयों में प्रीति और अहंकार की खुरसे में प्रीति है, उतनी अगर उससे आधी, ये खुरसे के लिए न जाने कितना कितना सलूट मारना पड़ता है, कितनी कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना कितना हास्य विलास रखना पड़ता है। हाँ आओ 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 गणु थे वैसे वैसे भाई चा पाओ छोकरा, कारण के काम ना आगे वांछ कोक वक्त काम आपसे चौकड़ी आपवा। श्री राम, तो कुर्सी के लिए धन के लिए सत्ता के लिए जो प्रीति है उससे आधी, कितनी आधी, नाटक चला था ना, आधी सेवा तुम्हारी करेंगे और आधी हमारी लकड़ियां फाड़ेगा। हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति याते आधी, जो राम प्रति तो अवस मिटे भव बीती। जरा सा मैना मार दिया पत्नी ने और तुलसीदास आए जंगल में पुकारते भगवान को कि प्रभु मैं अपने कर्मों को और अपनी इंद्रियों की लोलुपता को देखता हूं तो मैं तुझे पुकारने के काबिल नहीं हूं, मैं साधु बनने के काबिल नहीं हूं, संत बनने के काबिल नहीं हूं, भक्त बनने के काबिल नहीं हूं, लेकिन तेरी कृपा पर भरोसा है। तू कम से कम इतनी तो कृपा करना कि मैं साधु न बनूं तो कोई हरकत नहीं, संत नहीं बनता हूं, भक्त नहीं बनता हूं, तो कम से कम तेरे भक्तों के द्वार का मुझे दास बना दे बस। अगर तेरे भक्तों और साधुओं के द्वार का दास बनने की मुझमें क्षमता नहीं है तो तेरे भक्त के घर का मुझे गाय बना दे नाथ, कम से कम मेरा दूध तेरी सेवा में आ जाएगा, तेरी भक्त की बंदगी में आ जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन मेरे इतने पुण्य नहीं कि मैं तेरे भक्त की तेरे साधु के घर की गाय बन सकूं, तू कम से कम गाय न बना दे तो घोड़ा तो जरूर बना देना, तेरा भक्त जगह तेरी चर्चा करने को जाएगा तो मेरा उपयोग हो जाएगा, इसी से भी मेरे कर्म कट जाएंगे और मैं तेरे तक पहुंच जाऊंगा। नाथ तेरे भक्त के घर का मुझे घोड़ा ही बना देना। फिर जरा हृदय ने धबकारे लिए कि घोड़ा बनने की भी मुझ में क्षमता नहीं, मैं स्त्री लंपटू सबके ऊपर रवाना हो रहा हूं, घोड़ा तो सबको सब समझता लेकिन मैंने तो सबको काष्ठ समझा था, मेरे को कहां घोड़ा बनने का भाग्य मिलेगा। फिर आंखों में से आंसू आए कि भगवान मैं तेरे भक्त के द्वार का घोड़ा नहीं बन सकता हूं तो कोई हरकत नहीं, कम से कम नाथ इतनी तो जरूर कृपा करना, तेरे भक्त के द्वार का तेरे संत के द्वार का मुझे कुत्ता ही बना देना, उसकी निगाहें पड़ेगी और कभी न कभी तेरी भी निगाह पड़ जाएगी। लेकिन भगवान शिष्टाचार में जरा भी पीछे पड़े ऐसे नहीं है। मनुष्य पानी का प्याला पिलाता है तो उसका हम अभिवादन करते हैं। मनुष्य कोई पुकारता है तो हम लोग उसके पड़खे हो जाते। सच्चे हृदय से प्रार्थना किया हुआ तुलसीदास ने जब भगवान को पुकारा है तो कुत्ता क्यों बनाएंगे, घोड़ा क्यों बनाएंगे, गाय क्यों बनाएंगे, दास क्यों बनाएंगे, वो तो तुलसी को संत तुलसी बना दी।
जिसमें सेवा और श्रद्धा है वह तो स्मरण मात्र से गुरुओं के प्रसाद का अधिकारी होता जाता है। बाहर से व्यक्तिगत मुलाकात न मिलते हुए भी वो जब चाहे जहां चाहे भीतर से मुलाकात करके मार्गदर्शन ले लिया करता है। बाहर से प्रसाद न लेते देते भी जो सत शिष्य है वो तो भीतर के संकेत का ही प्रसाद पाकर तृप्त हो जाता है। काश हमारी योग्यता बढ़ जाए, हमें जो संत देना चाहते हैं वही हम ले लें तो कितना अच्छा होगा। हमें जो श्री कृष्ण जैसा देखना चाहते हैं वैसा हम हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। हमें जो ब्रह्मवेता जहां पहुंचाना चाहते हैं ऐसे अंतरस्थल में हम विश्रांति पाकर पहुंच जाएं तो कितना अच्छा होगा। चित्त की विश्रांति और सहज अवस्था ये दुर्लभ है। वो भीतर के प्रसाद को प्रकट करती है। उसने सारे शास्त्र और ग्रंथ पढ़ लिए। जिसने उस परमात्मा विश्रांति में गोता मारा, साधक और साध्य के बीच की दूरी ही साधना का मार्ग होता है। साधक और साध्य के बीच की दूरी मिटाने का मार्गदर्शन दिखाना ही गुरुओं का काम होता है। जिन्हें क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता गुरुजी मिल गए उन्हें फिर और छोटी मोटी उपासनाएं करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी तो ईश्वर उपासना भी गुरु के ज्ञान से पूर्ण हो जाती है। उसका कर्मकांड भी गुरु के ज्ञान से फलित हो जाता है। जिसने गुरुओं की गहरी अनुभूति का आदर करके अपने हृदय में विश्रांति पाई उसने बहुत सारी साधनाओं का फल पा लिया। ये चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है और प्रसाद से सब दुख दूर होते हैं, ऊंचे प्रकार की साधना है। साध्य और साधक के बीच की दूरी मिटाने का काम गुरुओं का होता है, मार्गदर्शन करने का काम गुरुओं का होता है। कृष्ण कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये ज्ञानिनः और तत्वदर्शिनः जो बहुवचन है ये ज्ञानवानों के आदर के लिए प्रयोग किया गया है। ये बहुवचन है, ज्ञानी ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जैसे किसी व्यक्ति को आप करके हम बहु मान देते हैं, तू के बजाय तमे कहते हैं, ऐसे ही ये ज्ञानिनः और तत्वदर्शिनः शब्द प्रयोग किया गया है। ज्ञानवानों को मानवाचक शब्दों से गीता में कहा गया। ऐसे जो ज्ञानी और तत्ववेता हैं वे साधक की बुद्धि में बैठे हुए अज्ञान और आकर्षण को दूर करके उसके बुद्धि को परमात्मा प्रसाद की योग्यता प्रदान करते हैं और बात बात में उसके भीतरी जीवन को एक उचित दिशा का मोड़ दे देते हैं। ऐसे ज्ञानवान पुरुषों की मौन अवस्था से भी हमें लाभ होता है और वे बोलते तो भी लाभ होता है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता चार प्रकार से हम लोगों का कल्याण करते हैं। जो ज्ञानवान महापुरुष लोग हैं वे दृष्टि से हमारा मंगल चाहते हैं, मंगल करते हैं, शब्द से, स्पर्श से अथवा कोई आज्ञा आदेश करके या कोई सेवा स्वीकार के। ऐसे ज्ञानवानों की सानिध्यता मिलने से हम लोगों की साधना स्वाभाविक चलने लगती है। जिनके जीवन में ये बात समझ में आई कि संसार सब दुख मिटाने में समर्थ नहीं, संसार पूरा सुख देने में समर्थ नहीं, वे दुख हारी श्री हरि की यात्रा करना स्वीकार कर लेते हैं। सुख स्वरूप वो अंतर्यामी परमात्मा की यात्रा करना वे स्वीकार कर लेते हैं। संसार में सब दुख मिटाने की शक्ति नहीं, संसार में पूरा सुख देने की शक्ति नहीं। ये बात समझ में आते ही मानवी की वर्तमान तुच्छ परिस्थिति का उसे ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक उसका शारीरिक बल जगता नहीं, मानसिक उत्साह नहीं जगता और आध्यात्मिक बौद्धिक विकास करने की तत्परता नहीं होती। मानवी के मन में ये क्षमता है कि जहाँ है जिस वातावरण में है उसको सुखद बनाने की उसको क्षमता है और उसी घरेड़ में उसी चीले में उसी धारा में अपना जीवन पूरा कर देता है। लेकिन मानव को पता नहीं कि जो वर्तमान घरेड़ है, वर्तमान जीवन है, वर्तमान परिस्थितियां, ये कुछ भी नहीं तुम्हारी असलियत के आगे। तुम्हारे में इतना इतना खजाना छुपा है कि जिसका वर्णन करना साक्षात सरस्वती देवी के लिए भी संभव नहीं। इतना इतना खजाना हर मानवी के पास पड़ा है लेकिन मानवी मन के साथ जुड़कर संसार की जैसी अवस्था में पैदा होता है, जैसे चीले चाटी में रहता है, वहीं अपना सुख की कल्पना कर लेता है, सुख की आशा कर लेता है और सुख की आशा आशा में वहीं चक्र खाता रहता है कोलू के बैल जैसा। उसे पता चलने लग जाए कि इस प्रकार अगर करता कुछ कर्म करता रहेगा तो मृत्यु के समय करता अनाथ रह जाएगा। करता अगर मूल स्वरूप को नहीं पहचानेगा तो महाराज करता ने पति होकर पत्नी के साथ कर्तव्य निभा लिया तो क्या हो गया, कर्ता ने पिता होकर पुत्र के साथ कर्तव्य निभाया तो क्या हो गया, कर्ता ने जीव होकर ईश्वर के साथ कर्तव्य निभाया तो क्या हो गया, कर्ता ने अपने वास्तविक मूल स्वरूप को जब तक नहीं जाना तब तक कर्ता घाटे में रह जाता है। तो मूल स्वरूप को जताने के लिए, मूल स्वरूप में विश्रांति पवाने के लिए भगवान कहते तद विद्धि प्रणिपाते न, विधि सहित जाकर विनम्रता से, सेवा से, श्रद्धा भाव से भरकर। इस श्लोक के बाद आता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। श्रद्धा हो अश्रद्धालु को ज्ञान नहीं होता, श्रद्धा को श्रद्धावान को ज्ञान होता है, श्रद्धावान ही ज्ञान का अधिकारी है। रुपया खो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, मकान दुकान और ये चीजें थोड़ी चली गई तो बड़ी बात नहीं, लेकिन जीवनदाता के प्रति अथवा साधन के प्रति श्रद्धा चली गई तो सर्वनाश हो गया। ये तो नाश होने वाली चीज है, रुपया पैसा मकान दुकान ये तो छूटने वाली चीज है, लेकिन श्रद्धा जो है वो अछूट परमात्मा से एक कराने वाली। तो जीवन में जिसकी श्रद्धा नाश हो गई या श्रद्धा डिग गई तो समझो उसका तो सर्वनाश हो गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। और श्रद्धा में अपनी शक्ति है, श्रद्धा श्रद्धे श्रद्धास्पद से, प्रेम प्रेमास्पद से मिलाने की शक्ति रखता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तत्पर, तत्परता होनी चाहिए। श्रद्धा तो है लेकिन तत्परता नहीं होगी तो साधन छूट जाएगा। साधन में तत्परता हो, अगर साधन में तत्परता नहीं तो मन फिर और कुछ धंधे में ले जाएगा, पुण्य नाश करा देगा, जीवन खोखला हो जाएगा। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं वजायते। पुण्यों की कमी होती है तो अपने ब्रह्म स्वरूप में विश्वास ही नहीं होगा, अपने अखंड स्वरूप में विश्वास नहीं होगा, अपने अजर और अविनाशी स्वरूप में विश्वास ही नहीं होगा, अपने देह में ही विश्वास हो जाएगा। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं वजायते। तो पुण्यों की कमी होती, श्रद्धा की कमी होती है, तत्परता की कमी होती है, उसीलिए रास्ता लंबा लगता है। चातक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए, साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिल भर में घर न करे। लेकिन हम आवश्यकता समझते हैं संसार की और प्रेम करना चाहते परमात्मा से, अथवा तो आवश्यकता समझते हैं परमात्मा की और प्रेम करते हैं संसार से, इसीलिए हमारे दो नावों में पैर आ जाते हैं। हकीकत में आवश्यकता भी परमात्मा पाने की है और प्रेम प्रेमास्पद भी परमात्मा है। ईश्वर के सिवा और कहीं भी प्रेम किया तो अंत में ठोकर खाना ही पड़ेगा। ईश्वर के सिवाय और कहीं भी सत्य बुद्धि की, ईश्वर के सिवाय और कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा।